हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 15 श्लोक संख्या 12 13 और 14। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा। प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्त्वा। करारविन्दे नपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा मृतुमेत देव गोविंद धामो धर्मादवीति। ब्रजीव संतं नवनीत चोरं गोपांगनाना चदुकूल चोरं। श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरं चोराग्यगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीकृष्णश्यामं मनसा स्मरामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। पहला स्कंद अध्याय 15 जिसका शीर्षक है पांडवों का सामयिक प्रस्थान श्लोक संख्या 12। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं,
यत्तेज साथ भगवान युधिशूल पाणी विस्मा पिता स गिरिजो स्त्रमदा निजम्मे अन्ये पिचाह ममुनैव कले वरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्धम। यत्तेज साथ भगवान युधिशूल पाणी विस्मा पिता स गिरिजो स्त्रमदा निजम्मे अन्ये पिचाह ममुनैव कले वरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्धम।
शब्दार्थ यत् तेजसा था भगवान, यत् तेजसा। अर्जुन कह रहे हैं, हमने जो कुछ भी प्राप्त किया है वो सब उन्हीं की कृपा से है। तो अभी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, यत यानी जिनकी तेजसा, जिनकी कृपा से, जिनके तेज से, जिनकी शक्ति से। अथ भगवान युधिशूल पाणि, अथ मतलब एक समय ऐसा आया कि कृष्ण की कृपा से भगवान का है शिव जी को, शूल पाणि कहते हैं त्रिशूलधारी जो शिव जी हैं उनके साथ युद्ध किया था एक समय। तो विस्मा पिता सगिरिजो गिरिजानंदनी जो हिमालय पर्वत की पुत्री पार्वती थी वो भी आश्चर्यचकित हो गई थी, शिवजी भी आश्चर्यचकित हो गए थे। इतना पराक्रम के साथ मैंने युद्ध किया था, मेरे अंदर कोई बल नहीं था, ये सब कृपा मेरे कृष्ण की थी। मैं तो शिवजी के साथ युद्ध कर रहा था परंतु शिवजी मेरे कृष्ण पर, कृष्ण की भक्ति को देखकर, कृष्ण पे मेरा जो अनन्य विश्वास था उसको देखकर वो मुझ पर कितना प्रसन्न हुए। तो उन्होंने क्या किया, अस्त्रम अदात, जो अपना अस्त्र था उनका, जो उनका अपना अस्त्र था पाशुपत अस्त्र, निजम मतलब उनका पाशुपत अस्त्र जिनसे वो प्रलय के समय प्रलय कर रहे होते हैं, वो पाशुपत अस्त्र मुझे अदात यानी मुझे दे दिया। इतना प्रसन्न हुए वो मेरे से क्योंकि मेरे ऊपर कृष्ण की कृपा थी। तो शिव जी क्योंकि भगवान के भक्त हैं इसलिए जिनके साथ कृष्ण हैं वो अवश्य उनकी सहायता करते हैं, लेकिन अपने भक्तों की सहायता नहीं करते। जो भगवान को छोड़कर उनकी भक्ति करने लग जाते हैं, जैसे कंस हो, रावण हो, हिरण्यकश्यप हो, जितने भी असुर हैं ना वो भगवान शिव जी की पूजा करते हैं भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर। तो उनको कभी भी उनके ऊपर, रावण के ऊपर कभी कृपा नहीं करते क्योंकि रावण जो है वो श्री राम का शत्रु है। तो भले ही शिव जी का कितना ही महान भक्त क्यों न हो परंतु शिव जी उनका साथ नहीं देते। परंतु वही शिव जी यदि उनके साथ युद्ध भी किया जाए और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की जाए तो भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। यह कितना अद्भुत आश्चर्य है कि जो उनकी भक्ति करते हैं उनकी सहायता नहीं करते, परंतु जो उनके साथ युद्ध करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, उन्हें अपना निजी अस्त्र प्रदान कर देते हैं। आगे वे कहते हैं, अन्ये पिचा हम अमुनैव कलेवरम, इसके अतिरिक्त इससे भी बहुत बड़ी आश्चर्यमय बात क्या है, अमुनैव कलेवरम। कलेवर कहते हैं ये जो शरीर है ना हमारा उसके साथ। तो अर्जुन कह रहा है मैं अपने इसी शरीर के द्वारा स्वर्ग में गया है ना। हर कोई अपने जब भी स्वर्ग में जाता है तो अपने इस भौतिक शरीर को इस पृथ्वी पर छोड़ के जाता है, लेकिन क्योंकि कृष्ण की मेरे ऊपर असीम कृपा थी, ये कृष्ण की कृपा से हुआ था कि मैं अपने इसी भौतिक शरीर के साथ स्वर्ग में गया था। और प्राप्तो महेंद्र भवने महदासनार्धम, प्राप्तो महेंद्र भवने, जो इंद्र का बहुत ही विशाल भवन है जिसमें इंद्र बहुत ही बड़े विशाल सिंहासन पर बैठते हैं, वहां पर महदासनार्धम।
तो उन्होंने अपने साथ आधे आसन पे मुझे बिठाया और खुद आधे आसन पे बैठा। इंद्र अकेला बैठता है, परंतु जब मैं गया तो मुझे भी अपने साथ बिठाया। तो ये कितना मेरे ऊपर कृपा, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं थी, ये सत की सत कृपा मेरे कृष्ण की थी और उन्हीं की कृपा से मुझे ये सब यश प्राप्त हुआ। अनुवाद देखिए, यह उन्हीं का प्रताप था कि मैं एक युद्ध में शिवजी तथा पर्वतराज की कन्या उनकी पत्नी को आश्चर्यचकित करने में समर्थ हुआ। इस तरह वे यानी शिवजी मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना निजी अस्त्र प्रदान किया। अन्य देवताओं ने भी मुझे अपने अपने अस्त्र भेंट किए और इसके अतिरिक्त मैं इस शरीर से स्वर्ग लोक पहुंचा, जहां मुझे आधे ऊंचे आसन पर बैठने दिया गया। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से हमें समझाएंगे। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से शिवजी समेत सारे देवता अर्जुन से प्रसन्न थे। भाव यह है कि जिस किसी पर शिवजी या किसी अन्य देवता की कृपा होती है, उस पर भगवान श्री कृष्ण की भी कृपा हो ऐसा आवश्यक नहीं है। कितनी सुंदर और गूढ़ बात पर यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आप यदि किसी एक देवता के भक्त बन जाते हो तो जरूरी नहीं है कि कृष्ण की कृपा आपको प्राप्त हो जाए, है ना। भक्ति तो रावण ने भी की थी शिव जी की, परंतु कृष्ण की कृपा का पात्र तो नहीं बना। वही बात यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, रावण निश्चित रूप से शिव जी का परम भक्त था, किन्तु वह भगवान रामचंद्र के क्रोध से बच नहीं पाया। पुराणों में ऐसे अनेक घटनाएं भरी पड़ी हैं, किंतु यहाँ पर एक ऐसा उदाहरण मिलता है जिसमें शिव जी अर्जुन से युद्ध करके भी प्रसन्न होते हैं। युद्ध कर रहा है अर्जुन, उनको मारने के लिए तैयार है, उसके ऊपर बाण चला रहे हैं, परंतु प्रसन्न होकर अपना अस्त्र दे रहे हैं। परमेश्वर के भक्त जानते हैं कि देवताओं का सत्कार किस प्रकार किया जाए, किंतु देवताओं के भक्त कभी कभी मूर्खतावश ऐसा सोचते हैं कि भगवान देवताओं से बड़े नहीं हैं। कृष्ण के भक्तों का पता होता है कि देवताओं का सम्मान कैसे करना है, आदर कैसे करना है। वो वैष्णव है, वो बहुत उत्तर अधिकारी हैं, तो फिर उनको प्रणाम करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, परंतु उन्हें भगवान नहीं समझा जाता। लेकिन जो भगवान के भक्त नहीं होते, खाली देवताओं के भक्त होते हैं, वो अक्सर यहाँ मूर्खता कर बैठते हैं कि वो जिस देवता की पूजा करते हैं उसी को भगवान या उनसे बड़ा मानने लगते हैं। ऐसी धारणा से मनुष्य अपराधी बन जाता है और उसका अंत वैसा ही होता है जैसा रावण तथा अन्यों का हुआ था। रावण भी शिव जी सोच रहा था, मैं भक्ति कर रहा हूँ शिव जी की, काफी है, भगवान की भक्ति करने की या भगवान के शरण में जाने की आवश्यकता नहीं, मारा गया। उसी तरह से बहुत सारे राक्षस जो अलग अलग देवी देवताओं की उपासना तो करते हैं, हिरण्यकश्यपु ने 36,500 साल ब्रह्मा जी की तपस्या की, भगवान के हाथों मारा गया। मतलब भगवान के शरण में जाना अत्यंत आवश्यक है, भले आप और किसी के शरण में जाते हो, प्रणाम करते हो, नहीं करते हो, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। कृष्ण की शरण में अगर आप जाते हो तो सारे देवी देवता, यहाँ पर शिव जी के साथ अर्जुन ने युद्ध किया, परंतु अर्जुन भगवान का भक्त था, प्रसन्न हो गए शिव जी। ये वैसे ही है जैसे यदि हम वृक्ष की जड़ पर पानी डाल रहे हैं तो पूरा वृक्ष संतुष्ट हो ही जाएगा, लेकिन एक पत्ते को सींचो 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 और बाकी वृक्ष को ना देखो, उसकी जड़ में पानी ना डालो, तब तो संभव ही नहीं है कि वो वृक्ष टिक सके। तो इसी यही बात यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं और खाली देवताओं की भक्ति करते हैं तो अंत वैसा ही होगा जैसा रावण का और अन्यों का हुआ। भगवान श्री कृष्ण के साथ सख्य भाव में संपन्न कार्य का अर्जुन द्वारा उल्लेख उन सबों के लिए शिक्षाप्रद है जो इस शिक्षा से आश्वस्त हैं कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करके सारे वर प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु देवताओं के भक्तों या पूजकों को केवल आंशिक लाभ होगा।
जो देवताओं की ही भांति नाशवान होगा। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर खाली कृष्ण की भक्ति करोगे तो सारे वर प्राप्त हो जाएंगे, जिस जिस देवता से जो जो चाहिए होगा वो। अभी जो जो देवता जिस जिस डिपार्टमेंट का है वो है तो कृष्ण का ही दास, तो कृष्ण यदि स्वामी प्रसन्न है आपसे तो वो सारी वस्तुएं आपको स्वतः प्रदान हो जाएंगी। लेकिन यदि देवता की खाली भक्ति करेंगे तो उससे एक आंशिक लाभ सिर्फ उसी के अंडर में जो डिपार्टमेंट होगा वो वस्तु आपको दे देगा, लेकिन वो होगी भी कैसी वस्तु? नाशवान, क्योंकि देवता भी नाशवान। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में बहुत सुंदर 7.21 या 9.21 ये अप्यन्य देवता भक्ता 23 ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्त्य श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, जो अन्य देवताओं के भक्त हैं और अत्यंत ही श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, परंतु यह अविधि पूर्वक करते हैं, अर्थात ये तरीका सही नहीं है। क्योंकि पानी तो वृक्ष की जड़ में ही डालना चाहिए, दूसरे पत्ते पत्तियां वो सब स्वतः संतुष्ट हो जाएंगी, एक पत्ते को खाली सींचने से वृक्ष कभी नहीं संचित हो सकता। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस श्लोक की दूसरी महत्ता यह है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन इसी शरीर में स्वर्ग पहुंच गए, जहाँ स्वर्ग के देवता इंद्र ने अपने अर्ध ऊंचे सिंहासन पर बिठाकर उन्हें सम्मानित किया। कोई मनुष्य पुण्य कर्मों से स्वर्ग पहुंच सकता है, जैसा कि सकाम कर्मों की श्रेणी में शास्त्रों का अभिमत है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो यदि पुण्य कर्म करेंगे तो उद्यम गच्छन्ति सत्वस्तो, ऊपर के स्वर्ग लोकों में जाएंगे, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 9.21 में कहा गया है। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम् विशालम् क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति के त्रय धर्म मनोप्रपन्न, क्या जो तीन वेदों के लिखे हुए सकाम कर्म करते हैं वो स्वर्ग लोक में जाते हैं, और जब क्षीण पुण्य हो जाता है तो वापस आ जाते। कहा जाता है कि जब ऐसे पुण्य कर्मों का फल क्षीण हो जाता है तो भोक्ता को पुनः पृथ्वी लोक पर गिरा दिया जाता है। चंद्रमा भी स्वर्गीय नक्षत्र के समान स्तर पर है, और जिन लोगों ने यज्ञ संपन्न किए हैं, दान देकर तथा कठिन तपस्या करके पुण्य अर्जित किया है, उन्हें ही शरीर की आयु पूरी होने के बाद स्वर्ग लोक में प्रविष्ट होने दिया जाएगा। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शास्त्र क्या कहता है कि जब आप दान दोगे, पुण्य करोगे, तपस्या करोगे, सकाम कर्म करोगे, और जब आपका यह शरीर समाप्त हो जाएगा तो आपको स्वर्ग में कुछ समय के लिए रहने दिया जाएगा। लेकिन अर्जुन को उसी शरीर में स्वर्ग में प्रविष्ट होने दिया गया है, केवल भगवत कृपा का प्रसाद था। इसे अर्जुन स्वयं कह रहा है, यह तेज साथ सिर्फ उनकी ही प्रभाव से, उनकी ही कृपा से ऐसा संभव हुआ था, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं थी। यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं अन्यथा ऐसा संभव ही नहीं था। आधुनिक विज्ञानियों द्वारा स्वर्ग लोक में प्रवेश के सारे प्रयास व्यर्थ सिद्ध होंगे, भले कितनी कोशिश करें कि कौन से ही एरोप्लेन हेलीकॉप्टर्स बना दें, लेकिन स्वर्ग में वो अपने इस यांत्रिक क्रिया से नहीं जा सकते। स्वर्ग में जाने की कोई मैकेनिकल क्रिया नहीं हो सकती, उसके लिए शुद्ध भक्त, अगर आपका शरीर शुद्ध भक्त, क्योंकि अर्जुन शुद्ध भक्त था, यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि ऐसे विज्ञानी अर्जुन के समान नहीं है,
वे तो सामान्य मनुष्य हैं, जो यज्ञ दान या तपस्या की निधि से विहीन हैं, न यज्ञ करते न दान देते न तपस्या करते हैं और न ही कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि उनको स्वर्ग में जाने दिया जाएगा। जो विधि शास्त्र में लिखी हुई है उसी के अनुसार स्वर्ग में जाया जा सकता है। यह भौतिक शरीर प्रकृति के तीन गुणों सतो रजो तथा तमो गुणों से प्रभावित रहता है। आधुनिक जनसंख्या न्यूनाधिक रूप से रजो तथा तमोगुणों से प्रभावित होती है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, वैसे तो सत्वगुण भी है प्रकृति में, लेकिन आज का मनुष्य ज्यादातर रजोगुण और तमोगुण में ही गिरा हुआ है। सत्वगुण तक पहुंचने का लक्षण ही नहीं है उसके अंदर, और इस प्रभाव के लक्षण उनके अत्यंत कामुक तथा लोभी होने के से प्रकट होते हैं। कामुक, आज जीव के अंदर बहुत काम वासना है, इच्छा है, और अत्यंत लोभी है, ये चाहिए वो चाहिए और ज्यादा चाहिए, तो ये रजो और तमोगुण के ही लक्षण है। सत्वगुण के अंदर आता नहीं तो ऐसे पतित लोग मुश्किल से स्वर्ग लोक पहुंच सकते हैं। स्वर्ग लोक के ऊपर भी अनेक लोक हैं जहाँ केवल सत्वगुणी ही पहुंच सकते हैं। इस ब्रह्मांड में स्वर्ग तथा अन्य लोकों के निवासी अत्यंत बुद्धिमान हैं। अभी यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी एक बात बता रहे हैं कि जिस तरह से ये पृथ्वी लोक है ना, पृथ्वी लोक के जो जीव हैं उनके पास इतनी बुद्धि नहीं है, इतना सौंदर्य नहीं है, इतना धन नहीं है, लेकिन इससे ऊपर फिर भी हम बोलते ना कि ये कितना धनी है, ये कितना सुंदर है, हमें यहाँ का भी धन और सुंदरता और बल आकर्षित करता है ना, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर के लोकों में जाते जाते हैं तो ऊपर के लोकों में बहुत अधिक होता है, हमसे अधिक बुद्धि है, हमसे अधिक बल है, हमसे अधिक सुंदरता है। तो जो स्वर्ग है, जैसे अभी यहाँ पर भूलोक है, उसके बाद भूलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सिद्धलोक, उसके बाद स्वर्गलोक आता है, तो वहां के लोगों के अंदर जितने वहां पर जीव रह रहे हैं, निवासी रह रहे हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा बुद्धि है, मनुष्यों से कई गुना अधिक, और एक से एक बढ़कर सत्वगुणी होते हैं। वे सब भगवान के भक्त होते हैं, और यद्यपि उनका सत्व मिश्रित होता है, सत्व मिश्रित होता है मतलब कुछ इच्छा थी उनके हृदय के अंदर, खाली सत्वगुण होता तो फिर वो शायद भगवत प्राप्ति करते, फिर शुद्ध सत्व तक पहुंचे, लेकिन मिश्रित होता है तो भी वे देवता कहलाते हैं ना, फिर देवता कहलाते हैं, जिनमें इस जगत में संभव अधिकतम मात्रा में सद्गुण पाए जाते हैं। इस जगत में लोगों के अंदर जितने मात्रा में सद्गुण पाए जाते हैं उससे बहुत ज्यादा सद्गुण उनके अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए वो स्वर्ग में जाकर देवता बने हैं। हम अपनी निजी कोशिशों से बगैर कोई सत्कर्म किए, बगैर सद्गुणों को और सत्वगुणों को एकत्रित किए हम स्वर्ग लोक में नहीं जा सकते। लेकिन ये अर्जुन थे, जो सशरीर अर्जुन अपने इसी भौतिक शरीर के साथ स्वर्ग में गए थे, और उसका कारण भगवान की कृपा, ये केवल कृष्ण की कृपा थी कि उन्हें शिव जी, ये कितना आश्चर्य, आज का मनुष्य जो है वो अपने जैसे मनुष्य से हार जाता है, लेकिन शिव जी जो कि महादेव कहलाते हैं, महादेव के साथ युद्ध किया अर्जुन ने और वो जीत गया, और उस पर महादेव ने प्रसन्न होकर उनको अपना पाशुपत अस्त्र दे दिया। हैरत है, लेकिन ये सब क्यों है, ये आश्चर्यमय घटना है। अर्जुन कह रहे हैं मेरी योग्यता के कारण नहीं, केवल कृष्ण की कृपा के कारण। आज अगर हम कुछ करके दिखाते हैं, हम समझते हैं कि हमने अपनी बुद्धि से ये किया, हमने अपने बल से ये किया, हमने अपनी मेहनत से ये किया, लेकिन वास्तव में यदि कृष्ण का साथ ना हो तो क्या हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं? हृदय के अंदर वो दिल को धड़काता है, हमारी आत्मा को पावर देता है। यदि हमारी आत्मा ही नहीं होती, इवन हमें शरीर पर तो कृष्ण ने दिया है, जो कुछ भी कृष्ण का ही है, फिर किस बात का अहंकार कि हम कुछ कर सकते हैं या हमारा कुछ है। अर्जुन के माध्यम से वेद व्यास हमें यह बता रहे हैं कि बचपन से लेकर आज तक और कितनी करोड़ों करोड़ों योनियों में हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ वो सब कृष्ण की कृपा है, कृष्ण का अनुग्रह है। हम कृष्ण के अनुग्रह के कारण आज भगवान का पवित्र नाम ले रहे हैं, कृष्ण की कृपा के कारण आज भागवत महापुराण को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ, ये सब कृष्ण की कृपा है कि हमें कृष्ण ने इतनी कृपा की है कि हम दिन ब दिन कृष्ण की ओर बढ़ रहे हैं, वरना योग्यता नहीं है हमारे अंदर।
इसी बात को अर्जुन आगे कहते हैं, तत्रैव मे विहरतो भुजदंड युक्मं गांडीव लक्षण मराति वधाय देवा सेन्द्रा श्रितायदनुभावित नामांच मीडं तेनाहमद्यमुषित पुरुषेण भूम्ना यत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं गांडीव लक्षणमराति वधाय देवा सेन्द्रा श्रितायदनुभावितमाजमीढ तेनाहमद्यमुषित पुरुषेण भूम्ना तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं गांडीव लक्षणमराति वधाय देवा सेन्द्राश्रिता यदनुभावितमाजमीढ तेनाहमद्यमुषित पुरुषेण भूम्ना तत्रैव मे विहरतो। तत्रैव मतलब उस स्वर्ग लोक में जब मैं भगवान की कृपा से स्वर्ग में गया था, मैं विहरतो मैं अतिथि के रूप में वहां पर था, और भुजदंड युग्म मेरे जो बाजुओं का बल है उसके कारण, क्योंकि ये सब बल भगवान की कृपा से है, तो उन बाजुओं के बल में क्या हुआ, गांडीव लक्षण मरता, ये एक राक्षस था, इसका नाम था अराति, और इसको बोलते थे निवात कवच नामक एक आसुर था जो स्वर्गलोक के देवताओं को बहुत ज्यादा तंग करता था। तो धाय वे मतलब इसको क्या करना, वधाय उसको मारने के लिए देवताओं की शक्ति काम नहीं आ रही थी, लेकिन देवताओं ने अर्जुन से कहा, देवा श्रेन्दा श्रुता, सारे देवता और इंद्र ने अर्जुन की यद अनुभावित आजमीड, ये युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं कि हे आजमीड के वंशज, मैं आपको बताऊं, जब मैं स्वर्ग में गया था, अतिथि बना था, तो वहां पर एक राक्षस था, उसको हराने के लिए सारे स्वर्ग के देवताओं ने मेरी भुजाओं का सहारा लिया। ये केवल मेरी शक्ति नहीं थी, ये तो कृष्ण की कृपा थी, वो मुझे श्रेय देना चाहते थे, इसीलिए उसने मेरे द्वारा से ये कार्य किया। ये सब कृष्ण कर रहे थे, लेकिन श्रेय मुझे मिल रहा था, सब कृष्ण की कृपा से था। और वही कृष्ण, तेनाहमत्यमुषिता पुरुषेण भूम तेनाहम अध्य, यहाँ वो कह रहे हैं उस कृष्ण के द्वारा ही सब कुछ हुआ था, और अध्य इस समय मुषित यानी रहित हो गया हूँ। अब पुरुषेण भूमना, ये जो परम पुरुष है, जो परम व्यक्ति है, जिसके कारण यह सारे कार्य हो रहे थे, ये सारा यश हमें मिल रहा था, अब मैं उस परम पुरुष भगवान से विहीन हो गया हूँ, वो मुझे छोड़ कर चले गए हैं। अनुवाद देखिए, अर्जुन कह रहे हैं, जब मैं स्वर्ग लोक में अतिथि के रूप में कुछ दिन रुका था, तो इंद्रदेव समेत स्वर्ग के समस्त देवताओं ने निवात कवच नामक असुर को मारने के लिए गांडीव धनुष धारण करने वाली मेरी भुजाओं का आश्रय लिया था। हे अजा आजमीर के वंशज राजा, इस समय मैं भगवान से विहीन हो गया हूँ, जिसके प्रभाव से मैं इतना शक्तिशाली था। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, स्वर्ग लोक के देवता निश्चय ही अधिक बुद्धिमान शक्तिमान तथा सुंदर होते हैं, तो भी उन्हें अर्जुन से उनके गांडीव धनुष के कारण सहायता लेनी पड़ी, क्योंकि गांडीव धनुष भगवान श्री कृष्ण की कृपा से शक्ति संपन्न था। भगवान सर्वशक्तिमान है और उनकी कृपा से शुद्ध भक्त इच्छानुकूल शक्तिमान हो सकते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है, किंतु जब भगवान किसी से अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं तो वह शक्ति विहीन हो जाता है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं,
कि जो भगवान के भक्त होते हैं तो इच्छानुकूल अनुकूल यानी परिस्थिति के अनुसार उसको जितनी शक्ति और जितनी बुद्धि की आवश्यकता होती है तो भगवान उसे प्रदान कर लेते हैं। और वो कोई भी कार्य, उसमें आश्चर्य की आवश्यकता नहीं है, कोई भी कार्य कर, जैसे श्रील प्रभुपाद जी, हमें कितने आश्चर्य लगता है कि 70 साल की आयु में अमेरिका गए और पूरे जो पूरा ग्लोब है, पूरा दुनिया है, उसकी 14 बार उन्होंने चक्कर लगाए। इस आयु में तो जीव अपने घर से नीचे उतरने से पहले भी 10 दफा सोचता है। और ये सब क्यों कर पाए? क्योंकि वो कृष्ण की शक्ति थी उनके पास। तो कृष्ण जो है अपने भक्त को परिस्थिति के अनुसार शक्ति प्रदान करते हैं जिसके द्वारा वो कार्य कर सकता है। और अर्जुन कह रहे हैं आज वही भगवान जो मुझे सारी शक्ति प्रदान कर रहे थे वो मुझे अकेला छोड़ के चले गए हैं। आगे अर्जुन कहते हैं यत् बांधव कुरु बलाधि मनंत पारम एको रथेन ततरे अमतीर्य सत्वम प्रत्याहृतं बहुधन च मया परेषां तेजास्पदं मरिमयं च हृतं शिरोभ्य यत् बांधवः कुरु बलाब्धिमनन्तपारम् एको रथेन ततरेहमतिर्यसत्वम् प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेषां तेजास्पदं मणिमया च हृतं शिरोभ्य यत् बांधव बांधव कहते मित्र को, बंधु कहते हैं। तो वो मेरे मित्र थे, उनकी मित्रता के कारण कुरु बलाब्धि मनंत पारम कुरुओं का समुद्र, कुरुओं की सेना की शक्ति रूपी इस समुद्र जो अनंत पार है उसको पार पाना, उसको मारना या उसको हराना संभव नहीं था। लेकिन एकी रथेना, एका की रथ पर आरूढ़ हुआ मैं और ततरे पार करने में समर्थ हो गया। मैंने उन सब के साथ युद्ध किया और मैं जीत गया। ये मेरी शक्ति नहीं थी, यत् बांधव ये सब कृष्ण की शक्ति थी कि मैं रथ पे आरूढ़ हुआ और उन्होंने रथ से लाया और सारा मैं सारा कुरुओं का समुद्र ज्यादा जो इतनी शक्ति थी उसको लांग गया। इसके अलावा तत्रा प्रत्याहृतम बहुधनम च मया परेशा प्रत्याहृतम, प्रत्याहृतम का मतलब वापिस ले लिया। बहुधनम धन धन उसको भी बोलते हैं, गायें वगैरह होती है ना जो, उनको भी गायों को सवरों को और जितना भी धन उनसे लूट लिया गया था वो सब उनके शत्रुओं से मैं वापस लेकर आ गया। तेजस पदम मणिमयम च हृतम शिरोभ्या और तेजस पदम यानी जो बहुत स्रोत है प्रकाश का स्रोत तेज जो है, तेजस पदम मणिमयम मणियों से सजे हुए जो मुकुट थे उनके शिरों पर जो लगे हुए थे वो हृतम जो बलपूर्वक ले लिए गए थे उनके सरों से उनको भी प्रत्याहृतम उनको भी मैं लेकर आ गया और सारी गांवों को भी लेकर आ गया जब विराट में युद्ध हुआ था। अनुवाद देखिए कौरवों की सैन्य शक्ति उस समुद्र की तरह थी जिसमें अनेक अजेय प्राणी थे, फलतः वह दुर्लंग थी ना। एक ये उनकी शक्ति दुर्लंग क्यों थी कि उनके अंदर जो व्यक्ति थे अजेय थे, भीष्म पितामह को कौन जीत सकता था, संभव था? उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था और जिस सेना के सेनापति भीष्म पितामह थे उस सेना को हरा दिया, कितने आश्चर्य की बात है। तो श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर अनुवाद में बताते हैं कौरवों की सेना शक्ति इतनी समुद्र की तरह थी जिसमें अनेक अजेय प्राणी थे, फलतः वह दुर्लंग थी किंतु उनकी मित्रता के कारण मैं रथ पर आरूढ़ होकर उसे पार कर सका। यह उनकी कृपा थी कि मैं गांवों के वापस गांवों को वापस ला सका और बलपूर्वक राजाओं के तमाम मुकुट एकत्रित कर सका जो समस्त तेज के स्रोत रत्नों से जटित थे। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझा रहे हैं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कौरवों के पक्ष में भीष्म, द्रोण, कृप तथा कर्ण जैसे बड़े बड़े सेनानायक थे और उनकी सैन्य शक्ति विशाल समुद्र की तरह दुर्लंघ्य थी। यह कृष्ण की ही कृपा थी कि अर्जुन ने अकेले ही रथ पर बैठकर उन सबों को एक एक करके सरलता से समाप्त कर दिया। दूसरे पक्ष के सेनापतियों में अनेक परिवर्तन हुए, है ना। बहुत सेना, भीष्म पितामह को सबसे पहले सेनापति बनाया। भीष्म पितामह मर नहीं सकते थे, उसके बावजूद बहुत परिवर्तन हुए। भीष्म पितामह के बाद 9 दिन तक भीष्म पितामह जैसे सेनापति हुए। वो गिरने के बाद द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया। उनके गिरने के बाद कर्ण को सेनापति बना दिया गया। उनके कर्ण के बाद शल्य को सेनापति बना गया। तो इतने सारे सेनापतियां एक के बाद एक सेनापति चेंज हो रहे हैं, हालांकि इतने ज्यादा महान योद्धा थे वहां पर। फिर भी यहाँ शिला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, किंतु पांडवों की ओर से श्री कृष्ण द्वारा चालित रथ पर आरूढ़ अर्जुन अकेले महायुद्ध का भार संभाल रहा था। वहां पर सेनापतियों के परिवर्तन का कोई सवाल ही नहीं था, कृष्ण वहां पर साथ में थे और अंत तक दृष्टद्युम्न ही सेनापति बना रहा। इसी प्रकार जब पांडव विराट के महल में अज्ञातवास कर रहे थे, जब हार गए थे द्यूत में दोबारा दूसरी दफा, तो फिर उनको 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, यानी कि उनको छुप कर रहना था। तो विराट राजा के महल में छुप कर रह रहे थे। उस समय क्या हुआ था, अज्ञातवास कर रहे थे तो कौरवों ने राजा विराट से झगड़ा किया और उनकी तमाम गांवें हार ली। ना उन कौरवों ने क्या किया, विराट राज की जितनी भी गांवें थी गौशाला से वो हरण कर ली। जब वे गांवों को लेके जा रहे थे तो अर्जुन ने उनसे अज्ञात वेश में युद्ध किया। अर्जुन उस समय भैरलला के स्वरूप में थे, नपुंसक बने हुए थे और उस स्वरूप में उनके साथ युद्ध किया और गायों को के साथ बलपूर्वक लूटी हुई संपत्ति तथा मुकुटों में लगे हुए रत्नों को भी उनसे छीन लिया। अर्जुन स्मरण करने लगा कि यह सब भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा से संभव हो सका। वास्तव में अर्जुन आज भगवान श्री कृष्ण को बहुत याद कर रहा है और कह रहा है कि कृष्ण की कृपा से मैंने कितना सब प्राप्त किया और आज वह कृष्ण मेरे साथ नहीं है, इसीलिए मैं आपको दुखी लग रहा हूँ, इसीलिए मेरा तेज समाप्त हो गया है, क्योंकि कृष्ण नहीं तो मेरे जीने का, समझो मेरे अंदर प्राण नहीं है। उसी तरह से हम सबको यही सोचना चाहिए, यदि भगवान हमसे दूर हो जाए, यदि भगवान की कथा श्रवण करने को ना मिले, यदि भगवान का पवित्र नाम जप करने को ना मिले, तो हमारा भी सारा तेज समाप्त हो जाएगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा।